शांति। पूर्व दो दिनों में प्रतिदिन मॉर्निंग राजयोग संबंधित एक एक सत्र चल चुका है, जिसमें आप सभी ने दो मूल सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। राजयोग का आधार कोई क्रिया नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई शास्त्र या गुरु नहीं है। राजयोग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। योग से संबंधित दो मूल सत्यों को आपने समझ लिया है। प्रथम लेसन में स्वयं का सही परिचय प्राप्त किया कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, हम अभौतिक हैं, अलौकिक हैं, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। शरीर भौतिक है, तत्वों से बना है, लेकिन हम स्वयं चैतन्य है, एक शक्ति है, दिव्य ज्योति बिंदु है। और कल मॉर्निंग दूसरे सत्र में पिता परमात्मा का सत्य परिचय आप सभी ने प्राप्त किया कि परमात्मा एक है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, वे मनुष्यात्माएं महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, आदि अनादि एक परम आत्मा है ही, नए कोई परमात्मा बनते नहीं जाते। तो अब आप देखिए, हम स्वयं भी चैतन्य शक्ति आत्मा है, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है, इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता। हमारा व्यक्तियों का व्यक्तियों से संपर्क संबंध साधनों के माध्यम से, प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से होता है। जैसे चित्र में बताया है कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच का संपर्क ध्वनि शक्ति और प्रकाश शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से दूर बैठे हुए लोगों से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलन मनाते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई साधन से नहीं हो सकता, कोई क्रियाओं के माध्यम से नहीं हो सकता। आत्मा का परमात्मा से मिलन मनोमिलन है, बुद्धि योग मिलन है, स्नेह मिलन, भाव मिलन है। इसलिए संकल्प शक्ति के माध्यम से हम परमात्मा से मनोमिलन कर सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता में भी स्पष्ट कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मयीम बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम हरेक अपने आप को देखें, हमने अपने मन और बुद्धि कहाँ लगा कर रखे हैं? हमने अपने मन बुद्धि देह में, संबंधों में, वैभव में, पदार्थों में, घटनाओं में, बातों में, व्यसनों में, विकारों में, हमने मन बुद्धि वहां अटैच करके रखे हैं। और फिर परमात्मा मिलन के लिए बाह्य मेहनत करते हैं, क्रियाएं करते हैं, भक्ति में कितनी न साधन सामग्री का ढेर लगा देते हैं, फिर भी रिजल्ट यही है कि मन और बुद्धि भटक रहे हैं। तो परमात्मा आकर के जो राजयोग सिखाते हैं, इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। भल योग विद्या भारत की प्राचीन विद्या है, परंतु क्या हम भारतवासियों को भी स्पष्ट हैं कि यथार्थ योग किसको कहते हैं? हम तो योग के नाम पर आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, देह दमन की हट क्रियाएं करते हैं। ये तो फिजिकल हेल्थ के लिए फिजिकल योग है, शारीरिक क्रियाएं हैं, व्यायाम है। मिलन की तो कोई बात ही नहीं है। यथार्थ योग है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसलिए मिलन से पूर्व मिलन तभी होगा ना जब परिचय हो। एक दो को जानते ही ना हो तो मिलन कैसे बनाएं? इसलिए पूर्व दो सत्रों में हमारा अपना स्वयं का आत्मिक परिचय और पिता परमात्मा का परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम सर्व आत्माओं को बताया है वो आप सबको बताया गया, ताकि जैसे परिचय के बाद हम एक दो के बारे में चिंतन करते हैं, याद करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम याद कर सकते हैं। तो राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है, कई आसन प्राणायाम देह दमन हठ क्रियाएं इतनी कठिन होती हैं कि माताएं बहनें बूढ़े बीमार कर ही नहीं सकते। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल ना हो जो कोई कर सके कोई ना कर सके, इसलिए इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। यहां आप खुद देखते हैं अपने आप को, आराम से कुर्सी सोफा पर आप बैठे हैं, फिर भी एक घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते हैं या कितनी बार हम हिलते डुलते हैं। हम अपनी सहज रिलैक्स स्थिति में भी नहीं बैठ पाते हैं। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही आप बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे। आप यही सोचते रहेंगे कि कब ये घंटा पूरा हो तो ये आसन छूटे। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होके बैठना है। आप आराम से अपनी सहज स्थिति में बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए। अब हमारे ये तमो प्रधान तत्वों से बने शरीर भी ऐसे कमजोर रोगी बन गए हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए आराम से बैठिए, मन से अलर्ट होकर बैठना है, मन से अटेंटिव होकर बैठना है। जब भी आप परमात्मा से योग लगाना चाहें, मन से लक्ष्य पूर्वक बैठिए कि ये एक घंटा दो घंटा आधा घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए बैठा हूं, अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है, ये समय प्रभु चिंतन के लिए है, इस अटेंशन से बैठना। हमें अपनी घर गृहस्थी नौकरी धंधा समाज संसार परिवार के बारे में सोचना है तो बाकी के 22 घंटे हैं, लेकिन आप प्रतिदिन ये निश्चित करिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय योग के लिए उत्तम समय है। उस समय हम आराम करके उठते हैं, तन मन फ्रेश होते हैं, वातावरण शुद्ध शांत है, उस वायुमंडल में स्वयं से जुड़ना, उस पिता परमात्मा से मन बुद्धि को जोड़ना सहज हो जाता है। इसलिए सुबह एक घंटा और शाम को संध्या का समय भी योग के लिए उत्तम समय है। ये दो समय आप निश्चित करें और प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन करें। इस विद्यालय में भी चाहे यहां 1,000 हो, 5,000 हो, 25,000 हो, अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमारे नियमित राजयोगी भाई बहनों के रिफ्रेशर कोर्स चलते हैं, इंटेंसिव मेडिटेशन कोर्स चलते हैं। उसमें प्रति हफ्ता 15,000, 20,000 के ग्रुप्स आते हैं। हर मास में 2 ग्रुप आते हैं। कितने भी हजारों भाई बहने हों, पर सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए, 4 से 5 कलेक्टिव मेडिटेशन होता है, 5 से 6:30 के बीच में हर कोई स्नान आदि करके, एक्सरसाइज करके, आवश्यक सेवा करके तैयार हो जाते हैं। 6:30 से 8 हमारा मॉर्निंग ज्ञान मुरली का क्लास चलता है प्रतिदिन, चाहे कितने भी बड़े प्रोग्राम, क्योंकि बिना सेल्फ एम्पावरमेंट कोई भी क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में हम जाएंगे तो हम व्यक्तियों को या परिस्थितियों को पॉजिटिव रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। परिस्थितियों का प्रभाव आ जाएगा, व्यक्तियों के व्यवहार का प्रभाव आ जाएगा। इसलिए मॉर्निंग में अगर अपने को स्पिरिचुअली एम्पावर कर ले, सत्य ज्ञान और राजयोग के अभ्यास के द्वारा, फिर दिन भर कितनी भी बातें आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए राजयोग में हम सिखाते हैं कि हमें मन और बुद्धि परमात्मा में आसन्न करना है, स्थित करना है, न कि केवल बाह्य शरीर से आसन लगाकर स्थिर बैठना, ये बात नहीं है। शरीर से स्थिर बैठ गए पर मन बुद्धि परमात्मा स्मृति में स्थित नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं। इसलिए शारीरिक हेल्थ के लिए, तंदुरुस्ती के लिए भले आप व्यायाम करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, परंतु परमात्मा मिलन के लिए कोई शारीरिक क्रिया की आवश्यकता नहीं है। इस योग अभ्यास में क्या करना है, क्योंकि भक्ति में मन परमात्मा में लगाने के लिए कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र रटते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि राजयोग में हमें क्या करना है। तो राजयोग में न रटना है, न जपना है, न मुख से कोई आवाज करना है, क्योंकि रटना, जपना ये औपचारिक आर्टिफिशियल क्रियाएं हैं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनके नाम की माला फेरते हैं? क्या हम उनका नाम जपते हैं? नहीं, हम नेचुरल मन बुद्धि से उनको याद करते हैं। तो परमात्मा चिंतन, प्रभु मिलन के लिए भी ऐसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। हम अपने मन और बुद्धि को सहज परमात्मा स्मृति में, परमात्मा ज्ञान में, परमात्मा प्यार के मनन चिंतन में सहज एकाग्र नहीं कर पाए, तो हमें विभिन्न अभ्यास बताए गए, विभिन्न प्रयास कराए गए कि चलो भाई माला फेर के देखो मन लगता है, मंत्र जप के देखो, नाम जप के देखो मन लगता है, या मुख से गाओ, आरती भजन करो मन लगता है। तो भक्ति में ये हमारे विभिन्न प्रयास थे, परंतु जो क्रियाएं औपचारिक है, आर्टिफिशियल है, मन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, इसलिए फिर वो भटकना शुरू कर देता है। आप माला फेरते रहेंगे, मन भी फिरता रहेगा, मंत्र जपते रहेंगे, मन भटकता रहेगा। इसलिए इवन भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हुए हैं, देखिए कबीर जी ने भी क्या कहा है कि माला फेरत युग हुआ, गया न मन का मैल रे। इसलिए उन्होंने खुद देखो क्या सजेस्ट किया है कि हाथ के मन के छोड़ दे, मन का फेर। हमें मनोस्थिति बदलने की आवश्यकता है। खुद को देह समझने के कारण जन्म जन्मांतर से देहभान में रहने के कारण हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, देहाभिमानी बन गए, और देह भान में रहने से मन और बुद्धि बाह्य पदार्थों से, दुनिया से अटैच हो गया। इसलिए अभी हमारी मनोस्थिति बॉडी कॉन्शियस है, बहिर्मुखी है, संसाराभिमुख है। अगर हमें परमात्मा से मनोमिलन मनाना है, तो हमें मन को अंतर्मुखी बनाने की आवश्यकता है, हमें मन परमात्मा भिमुख करने की आवश्यकता है। तो ये मनोस्थिति बदलनी है, न कि हाथ से मन के बदलते हैं, वो तो बाह्याचार है, मन भी बहिर्मुखी होने कारण भटक जाता है। इस योग अभ्यास में कोई शब्द मंत्र का जाप करना नहीं है। अक्सर लोग अपने गुरुओं से, अपने शास्त्रों से श्लोक लेते हैं, नाम मंत्र लेते हैं और फिर जपते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कई बार व्यक्ति श्लोक रटते हैं, जपते हैं, इसका अर्थ भी समझते नहीं हैं। जब हम मंत्र का अर्थ नहीं समझते हैं, हम आचरण में क्या लाएंगे, अभ्यास में क्या लाएंगे। इसलिए हमें मंत्र सिर्फ रटना नहीं है, मंत्र के अर्थ को समझकर जीवन में धारण करना है। हमने धर्म के पुरुषार्थ को क्रियाकांड में सीमित कर दिया है, आचरण में धारण करने की बात ही नहीं। जबकि मंत्र का अर्थ है मंत्र माना श्रेष्ठ सूचन, श्रेष्ठ सलाह, गाइडेंस। तो हमें उस मंत्र के अर्थ को समझकर आचरण में लाना है, न कि सिर्फ रिपीट करते रहना है। इसलिए राजयोग में कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटना नहीं है, जपना नहीं है। ये सिर्फ मुख से बोलने की प्रथा भी नहीं है। हमें कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरना नहीं है। हमें यहाँ ओम शांति बनना है। ओम मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमें अपनी आत्मस्थिति को शांत बनाना है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है, ना ही इस योग अभ्यास में हमें मुख से कुछ भी गाना बजाना आवाज नहीं करना। क्योंकि अब आप जानते हैं परमात्मा इस आवाज की दुनिया में नहीं रहते हैं, वे इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं। इसलिए हमें साइलेंस में बैठकर सही अर्थ समझकर, ज्ञान समझकर, दिल के सच्चे प्यार से मन ही मन याद करना है। ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिले हैं, हम आवाज करते हैं, कानों से सुनते हैं। परमात्मा तो शरीरधारी है ही नहीं, वो तो है ही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज परमात्मा को पहुंचता है, दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए आप देखते हैं यहाँ हर कार्य, हर आपके सत्र शुरू होते हैं 3 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, 3 मिनट एंड करते हैं, तब साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करते हैं। जब तक आप संपूर्ण ज्ञानी और योग अभ्यासी बन जाएं, तब तक इसलिए प्रारंभ में हम एक गीत बजाते हैं, अंत में एक गीत बजाते हैं। ये गीत भी ज्ञान के बने हुए हैं। गीत मन में भाव जगाते हैं, संगीत भाव को गति देते हैं। प्रारंभिक अभ्यास में ये मददगार है, सहायक है, पर ये अनिवार्य नहीं है कि गीत ना बजे, संगीत ना बजे तो परमात्मा से योग ना लगे, ऐसा नहीं है। जब आपका अपना प्यार परमात्मा से लग जाता है, फिर आपका मन ही उनसे बातचीत करेगा, फिर आपको और कोई सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। तो दूसरी बात, राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं हैं। तीसरी बात, अक्सर भक्ति में हम मंदिर जाते हैं या मूर्ति के सामने बैठते हैं, चित्र लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, दीवा जलाकर फिर परमात्मा की याद में बैठते हैं। तो लोग सोचते हैं राजयोग में हमें योग कैसे लगाना है, हम सामने क्या रखें। तो भाइयों और बहनों, राजयोग में कोई मूर्ति फोटो चित्र का आधार नहीं लेना है। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से, फोटो से या मूर्ति से योग नहीं लगाना है। भक्ति में हम भगवान को मानते थे, परंतु यथार्थ रूप से जानते नहीं थे, इसलिए हरेक ने अपनी अपनी भावना, श्रद्धा, मान्यता अनुसार अपने अपने इष्ट के मूर्ति फोटो रख लिए, मंदिर बना लिए। वो भक्ति है, भावना की बातें हैं। परमात्मा केवल मानने का विषय नहीं है, परमात्मा सत्य है। हमें यथार्थ रूप से जानना है और दिल से स्वीकार करना है। अब आप जान चुके हैं परमात्मा शरीरधारी है ही नहीं, वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, इसलिए उसको निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप कहते हैं। परमात्मा इन आंखों से देखने की चीज ही नहीं है, हम इन आंखों से भौतिक चीजें देखते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि इन चर्म चक्षुओं से परमात्मा को नहीं देख सकते, हम स्वयं अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख सकते, क्योंकि हम भौतिक है ही नहीं ना, इन आंखों से देखने की बात ही नहीं। इसलिए हम साइलेंस में बैठते हैं, मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखते हैं, मन और बुद्धि से याद करते हैं। मन की आंख से परम ज्योति बिंदु परमात्मा को देखना है और बुद्धि से, बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हमें परमात्मा चिंतन का अभ्यास करना है। हमें मन ही मन उनसे बातचीत करनी है। अब तक सही ज्ञान न होने के कारण हम साधनों के आधार से, क्रियाओं के आधार से परमात्मा को याद करने का प्रयास करते रहे हैं। अब हमें सत्य ज्ञान के आधार से मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। यहां जो भी चित्र फोटो लगे हैं हमारे सेवा केंद्रों में, हमारे म्यूजियम्स में, आर्ट गैलरी में आप देखते हैं, अनेक चित्र लगे हैं, अनेक मॉडल्स लगे हैं, ये ज्ञान समझाने के लिए। हमें इन चित्रों से, मूर्तियों से योग नहीं लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना। जैसे अभी आप यहां बैठे हैं, इस हॉल में अभी सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया? क्या किया? मन की आंख से विजुअलाइज किया, क्योंकि बुद्धि में सूर्य का ज्ञान है, इसलिए मन विजुअलाइज करता है कि सूर्य आसमान में वो प्रकाशमान गोला है जो नित्य रोशनी और ऊर्जा देता है। बस अब हमारी बुद्धि में परमात्मा का सत्य परिचय आ गया है। आप मन की आंख से परम ज्योति बिंदु परमात्मा को देखें और बुद्धि से याद करना है, परंतु बाह्य दृष्टि से, कोई चित्र मूर्ति फोटो से हमें योग नहीं लगाना है। हम अपने घरों में चित्र लगाते हैं, कोई क्रिकेटर के, कोई एक्टर के, कोई प्राकृतिक दृश्यों के, कोई मित्र संबंधियों के फोटोज लगाते हैं। अब आप उठते बैठते वो ही देखेंगे, वो ही सोचेंगे, वैसे ही आप बनेंगे। कहते हैं ना, जैसा चित्र लगाएंगे ऐसा ही चरित्र बनेगा। उठते बैठते वो ही क्रिकेटर, एक्टर, प्राणियों के, मित्र संबंधियों के चित्र देखेंगे, उनके संबंध में ही सोचेंगे और जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। क्यों नहीं हम सत्य ज्ञान के चित्र लगाएं, ताकि उठते बैठते उन्हें देखें, सत्य ज्ञान की बातें सोचें, तो हम सत्य ज्ञान का स्वरूप बनेंगे। इसलिए ये चित्र ज्ञान समझाने के लिए, परिचय देने के लिए है। हमें कोई प्रजापिता ब्रह्मा से योग नहीं लगाना है, या योग अभ्यास कराने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों से योग नहीं लगाना है। हमें योग परमात्मा से लगाना है। जैसे बहन फिजिकल एक्सरसाइज करा रही थी, उसको देखकर आप फॉलो कर रहे थे, ऐसे ही हम स्टेज पर साइलेंस में बैठकर अंतर मन से परमात्मा को याद करते हैं, उनके ज्ञान का चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं, शुभ चिंतन में रहते हैं, ऐसे आपको भी मन और बुद्धि से फॉलो करना है। तो इस योग अभ्यास में कोई चित्र मूर्ति फोटो का आधार नहीं है। राजयोग सहज योग है, इजी एंड नेचुरल है। इसमें कोई बाह्य आचार नहीं है, हर कोई योगी बन सकता है। जब हम भाई बहनों को ये संदेश देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं। हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, परिवार वाले हैं, नौकरी धंधे करने हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं? क्योंकि योग के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। लोग सोचते हैं, क्योंकि अब तक अधिकतर जो योगी हुए, तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए, तो लोग सोचते हैं कि हम तो घर बार छोड़ नहीं सकते, नौकरी धंधा छोड़ नहीं सकते, परिवार छोड़ नहीं सकते, हम योगी कैसे बनेंगे? योगी बनना हो तो कहीं शांत एकांत में जाएं तो मन लग सकता है। ये लोगों की मान्यता है। इस गलत मान्यता के कारण ही ये रिजल्ट हुआ है। राजयोग घर गृहस्थ में रहते हुए करना है, राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। इसलिए देखो हम क्या सिखाते हैं कि हमें दुनिया को नहीं छोड़ना है। हमें क्या छोड़ना है? देहभान को छोड़ना है। हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनना है, गॉड कॉन्शियस बनना है। हमें कॉन्शियसनेस को चेंज करनी है, न कि कोई बाह्य बदलाव की बात है। कोई स्थान बदलने से, कोई ड्रेस बदलने से योगी नहीं हो जाते। इसलिए हमें बाह्य स्थान नहीं, आत्मस्थिति बदलनी है। हमें ड्रेस बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से, कोई सफेद वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई योगी नहीं बन जाता। हमें बाह्य ड्रेस नहीं बदलना, हमें आंतरिक स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति को बदलना है। ये सफेद ड्रेस इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, हर विद्यालय में होते ही है ना? ये हमारा यूनिफॉर्म है। सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। योगी आत्मा को सफेद वस्त्र पहनना अच्छा लगता है। इसलिए और हम यहां फुल टाइम समर्पित है, इसलिए जो समर्पित है वो फुल टाइम सफेद वस्त्र पहनते, बाकी जो भाई बहने अपने घरों से आते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, वे अपनी दुनियादारी के हिसाब से अपने प्रसंगों में जो चाहे रंगीन पहन सकते हैं। सिर्फ विद्यालय ये सिखाती है कि हम स्वच्छ वस्त्र पहने, मर्यादा पूर्ण ड्रेस पहने। इसलिए ड्रेस नहीं बदलना है, आंतरिक वृत्ति, दृष्टि, स्मृति सब कुछ बदलना है। केवल माथा मुंडा लेने से या जटा बढ़ा देने से कोई योगी नहीं हो जाता। इस योग अभ्यास में बहुत ऊंचा लक्ष्य है, हमें सिर्फ पूजा पाठ, धूप दीप, भजन कीर्तन करके खुश हो जाने की बात नहीं। हम भक्ति में नियम से सुबह शाम 5-10 मिनट, आधा घंटा, घंटा भक्ति पूजा पाठ कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि हम धार्मिक हैं, जबकि प्रैक्टिकल जीवन में धर्म का कोई प्रभाव नहीं आता है। इसलिए आज के युवा, एजुकेटेड बच्चे स्पष्ट कहते हैं, आप रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु रोज घर आकर गुस्सा भी करते हैं, तेरी मेरी भी करते हैं, आचरण पर तो कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए राजयोग का ध्येय सिर्फ पूजन, नमन, वंदन, गायन, दर्शन, अर्चन करके खुश होने का नहीं, हम नियम से कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। इसलिए राजयोग का ध्येय देखो क्या है, हमें पुजारी से पूज्य बनना है, हमें पति से पावन बनना है, हमें मनुष्य से देवता बनना है। जब तक हम परमात्मा के सत्य ज्ञान से और योग अभ्यास की शक्ति से, जब तक हम अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कर्म, प्रवृत्ति को शुद्ध, पवित्र नहीं बनाते हैं, हम सच्चे योगी बन नहीं सकते। हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों के बल से अपनी जीवन नैया को पार करना। परमात्मा को याद करने में देखो कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। कोई जोर जोर से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं माइक पर, हर आए दिन, वार त्योहार, तिथि नक्षत्रों में, श्रावण मास, अधिक मास, दिन रात माइक लगाकर कितने भजन गाते हैं, आरती गाते हैं, आवाज करते हैं। राजयोग में हमें परमात्मा को पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना है। आप समझ चुके हैं, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। हमें कहते हैं सभी, हम भगवान को याद करते हैं, अक्सर भगवान से मांगते ही रहते हैं, हे भगवान विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं, हमें मांगना नहीं है, हमें मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना है बताइए, क्यों नहीं मांगना है? हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम वारिस हैं, अधिकारी हैं। परमात्मा से प्राप्त करना हमारा बर्थराइट है, मांगने की बात ही नहीं है। रोज उठ के आए और मांगते रहे तो अच्छे लगेंगे, वो व्यक्ति प्रिय लगेगा नहीं। हमें मांगना नहीं है, हमें परमात्मा का लायक बच्चा बनना। गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पर क्या हम खुद को ईश्वरीय संतान कहला सकते हैं? पिता दाता है और हम मांगता क्यों है? पिता सदा पावन है, हम पतित क्यों है? इसलिए मांगना नहीं है, लायक बच्चा बनना है। योग्य बच्चे को माँ बाप खुद ही अपने आप देते हैं, देते हैं कि नहीं देते? आप सबका अनुभव क्या है? बेटा लायक है, बच्चे लायक है, बेटी लायक है, हम अपने आप उनके लिए प्रबंध करते हैं। तो मांगना नहीं है, योग्य बनना है। कई बड़े दीनहीन लाचार होकर ईश्वर को विनती करते हैं, प्रार्थना करते रहते। राजयोग में हमें विनती भी नहीं करनी, कोई प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं ना, परमात्मा स्वयं ही दाता है, जो सदा दाता है, सर्व के दाता है, सदा दाता है, जो निरंतर दे ही रहे हैं। उनको फिर कहना देना देना देना, ये तो इंसल्ट करना है ना। इसलिए न मांगना है, न विनती करनी है, न मुख से आवाज करना। हमें तो प्यार से, सही ज्ञान से याद करना है। भगवान दाता है, दे ही रहे हैं, और हर कोई जानता है परमात्मा देते हैं तो कैसा देते हैं, क्या जानते हैं? छप्पर फाड़ कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं देते हैं, वो तो अनलिमिटेड बेहद देते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें खुद को देखने की आवश्यकता है, स्वदर्शन करने की आवश्यकता है। परमात्मा पिता है, दे ही रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मेरा योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन। हमारा परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं रहा। आपके शहर में पावर हाउस है, आपको अपने घर में बिजली चाहिए, क्या करना होगा? कनेक्शन करना होगा ना, सिंपल बात। परमात्मा स्पिरिचुअल पावर हाउस है, ऑलमाइटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी है, प्यार का सागर है, कल्याणकारी है, रहम दिल है। अगर हमें उस पिता से शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता चाहिए, हमें उनसे कनेक्ट होना है। मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़नी है, हमें उनकी याद में, स्मृति में, चिंतन में रहना। तो स्मृति से ही समृद्धि आती है, उनकी याद से ही दिव्य अनुभूति होती है। सूर्य से रोशनी हम मांगते नहीं हैं, सूर्य है ही एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट एंड माइट। उनकी उपस्थिति ही लाइट फैलाती है, ऊर्जा फैलाती है। मुझे घर में रोशनी चाहिए, मुझे खिड़की दरवाजे खोलने हैं, मुझे पर्दे हटाने हैं और सूर्य के तरफ मुख करना है, तो रोशनी मिलेगी ना। हमें भी मन और बुद्धि के खिड़की दरवाजे खोलने हैं, दिल दिमाग खोलने हैं। हमें अज्ञानता के पर्दे हटाने हैं और बुद्धि योग परमात्मा के प्रति फोकस करना है, तो हमें उनकी स्मृति से ही शक्ति मिलती है, अनुभूति होती है, प्राप्तियां होती हैं। योग मीन्स रिलेशन। दुनिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग रहते हैं, क्या सबकी याद हमें आती है? आती है? हाँ, हमें सबकी याद आती है? नहीं। हमें किसकी याद आती? जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके साथ हमारे रिश्ते नाते हैं, वही याद आते हैं ना। परमात्मा की याद हमें आती रहे, उसकी विधि है भगवान से संबंध जोड़ो। एक बच्चे को अपने शारीरिक पिता की याद स्वाभाविक आती है। सैकड़ों नर नारियों में एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचान कर उनके पास पहुंच जाता है, क्योंकि माँ को जानता है, पहचानता है, संबंध है, प्यार है। बस ऐसे हम आत्मा हैं, परमात्मा हमारे असली अविनाशी आत्मिक पिता है, इसलिए परमात्मा को सिर्फ मानना नहीं है। परमात्मा केवल भावना का, श्रद्धा का विषय नहीं है, परमात्मा सत्य है, यथार्थ रूप से जान पहचान कर जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ने। जब हम दिल से परमात्मा को अपना बना लेंगे तो ऑटोमेटिक याद आएंगी। हमने अपने मन बुद्धि और अपने अंतर का सच प्यार देहधारियों से लगा दिया है, वैभव पदार्थों से अटैच हो गए हैं, व्यसनों और विकारों में फंस गए हैं, इसलिए वही बातें दिन रात याद आती। अब हम परमात्मा से अटैच हों, हमें स्पष्ट होना चाहिए ये देह के मित्र संबंधी हैं, ये एक जन्म के हैं, ये शरीर छूट जाएगा ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे, नया शरीर लेंगे, नए मित्र संबंधी, नए माता पिता भाई बहन मिले, तो ये देह के मित्र संबंधी हैं, प्रति जन्म बदलते हैं। परमात्मा हम आत्माओं के परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं। वो हमारे सब कुछ है। माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। जब हम सत्य ज्ञान प्राप्त करके दिल के सच्चे प्यार से निश्चय पूर्वक परमात्मा को समझेंगे, स्वीकार करेंगे और उनसे जीवन जोड़ेंगे, हमें ऑटोमेटिक उनकी याद बनी ही रहेगी। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें कोई साधन नहीं लेने पड़ेगी। भक्ति में हम मुख से गाते हैं, वर्णन करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भक्ति में हम वर्णन करते रहते, प्रैक्टिकल रिलेशन निभाते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते। क्या हम अपने घर में रोज अपने माता पिता दादा दादी के सामने बैठकर गाते हैं क्या, तुम मेरे माता हो, पिता हो, दादा हो? हाँ, वहां गाने की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा के संबंध में भी ये औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं। हमें गाना नहीं है, वर्णन नहीं करना है, हमें परमात्मा से संबंध जोड़ने हैं, दिल से स्वीकार करने हैं, फॉलो करने हैं। ये है राजयोग की विधि। जब परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, वो ही मेरा परम शिक्षक, परम पिता, परम सतगुरु है, वो ही मेरा साथी है, जीवन सारथी है, वो ही मेरा शिक्षक है, रक्षक है, तो मुझे हर बात में, हर समय, हर स्थान सबसे पहले किसकी याद आएगी? किसकी याद आएगी? परमात्मा की याद आएगी ना, क्योंकि वो ही मेरा सब कुछ। हम परमात्मा को निमित मात्र कर दिया और संसार को सर्वस्व कर दिया, इसलिए बुद्धि योग दुनिया से लग गया। परमात्मा की याद में बुद्धि भटकती। अब हमें दिल का सच्चा प्यार, सर्व संबंध भगवान से जोड़ने हैं, क्योंकि वो ही अविनाशी साथी है, वो ही निष्काम है, सर्व प्राप्ति कराने वाला है, अविनाशी सुख देने वाला है। तो राजयोग की विधि है भगवान से संबंध जोड़ो। जीवन में अनुभव है बचपन से लेकर, जीवन में संबंध बदलते हैं, स्मृति भी बदलती है, स्नेह भी बदलता है। छोटे बच्चे माँ को, माँ से संबंध है, माँ से ही प्यार है, माँ की ही याद रहती। उस छोटे बच्चे को और बुलाते हैं तो भी वो बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता है। वही छोटा बच्चा बड़ा बनता है, बाल दोस्तों से मित्रता होती है, युवा बनता है और युवा मित्र मिलते हैं। अब माँ की याद कम हो जाती है, मित्रों की याद ज्यादा रहती है। शादी करते हैं, पत्नी की याद आती है, बच्चा होता है, अब माँ बाप का बुद्धि योग बच्चे के प्रति। जीवन में अनुभव है ना, संबंध बदलते हैं, स्मृति बदलती है, स्नेह बदलता जाता है। खुद को देह समझकर, देह संबंधों को याद करते थे, अब खुद को आत्मा निश्चय कर आत्मा के सर्व संबंधी परमात्मा को याद करना। ये है योग की विधि, संबंध जोड़ना, निभाना और फॉलो करना परमात्मा के साथ। तो योग का अर्थ है परमात्मा से मिलन मनाना। वैसे हरेक का बुद्धि योग कहीं न कहीं तो लगा हुआ ही है ना, उसको योगी नहीं कहते हैं। योग शब्द अलौकिकता का प्रतीक है। बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ना, उसको योग कहते हैं। तो मनोमिलन, जोड़, परमात्मा के संपर्क में रहना, मन बुद्धि से बार बार याद करते रहना, उसे योग कहते। योग मीन्स संबंध जोड़ना, परमात्मा को अपना बना लेना। वो ही मेरा माता पिता बंधु गुरु सखा, वो ही सब कुछ है, तो उनकी याद आएगी। योग मीन्स याद, स्मृति, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं। वो शरीर के लिए है, ये मुझ आत्मा के लिए है। मेरे मन बुद्धि संस्कार को प्यूरिफाई, एम्पावर और डिविनाइज करने के लिए राजयोग है। परमात्मा को याद करना, प्यार करना, क्योंकि वो ही सुख दाता है, सद्ज्ञान दाता है, आत्मा शक्ति दाता है। इसलिए भगवान को ही प्यार करना, उन पर फिदा होना, कुर्बान हो जाना, दिल से उनका बन जाना, समर्पणमयता परमात्मा के प्रति, वो है योग। तो राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है। मैं ये नहीं कहती हूं कि 3 दिन में आप योगी बन जाएंगे। योगी बनने के लिए हमें रोज अभ्यास करना है। बेशक 3 दिन में योग का बेसिक नॉलेज आपको यथार्थ रूप का प्राप्त हो जाएगा, परंतु योगी बनने के लिए हमें नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे ईश्वरीय ज्ञान आप सुनते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, और जितना दिल का सच्चा प्यार परमात्मा से होता जाएगा, उतनी एकाग्रता आती जाएगी। लास्ट बात, इस योग अभ्यास के समय आंख बंद करके बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। हम कर्म करते आंखें खुली रखते हुए भी उनकी याद में रह सकते हैं। भक्ति में हम आंख बंद करके बैठते हैं। स्कूलों में प्रार्थना कराते हैं, बच्चों को जबरदस्ती आंख बंद कराते हैं, क्योंकि हमारे मन में योग के बारे में गलत समझ है। हम ये मानते हैं कि आंखें खुली होगी, सब दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके बैठते। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या रिजल्ट है? हाँ, भटकता है ना, क्योंकि हमने बाह्य आंखें बंद कर दी, मन की आंख घूम रही, इसलिए एकाग्रता नहीं आती है। क्यों नहीं हम बाह्य आंखें नेचुरल खुली रखें, मन की आंख परमात्मा के प्रति फोकस करें? तो आंखें खुली हैं, अनेक सामने बैठे हैं, तो भी मन नहीं भटकेगा। इसलिए मन और बुद्धि के नेत्र को परमात्मा के प्रति फोकस करें और उनके चिंतन में रहना। तो ये है राजयोग की विधि। अब आपको स्पष्ट है प्रैक्टिकल योग अभ्यास हमें कैसे करना है। आज का ये अभ्यास 5 मिनट का हम विधि पूर्वक करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। कमर सीधी करके बैठेंगे ताकि आप थकें नहीं और चिंतन का प्रभाव हर ऑर्गन्स पर जाए। अपना डायरी, पर्स, फाइल, हैंडबैग, मोबाइल, जो भी चीजें हैं एक तरफ साइड में समेट के रख दें। हाथ में, गोद में लेके ना बैठे, गले में लटका के ना बैठे, साइड में रख दें। एक दो से अलग अलग होकर बैठे, टच करके ना बैठे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से अपने असली घर परम धाम में जाएंगे। जब तक इस दुनिया में बुद्धि होगी, आप एक रस स्थिर नहीं हो सकेंगे। हम अपने असली घर परम धाम में जाएं, जहां पिता परमात्मा भी रहते हैं, इसलिए मन की आंख से परम ज्योति बिंदु परमात्मा को देखें और उनको याद करें। ये आपका नया अभ्यास है, इसलिए मैं गाइड करूंगी, मैं कमेंट्री दूंगी, विचार दूंगी, वो मुख से रिपीट नहीं करना है, आवाज नहीं करना है, मन ही मन रिवाइज करना है, अर्थ समझ कर रियलाइज करना है। इस अनुभूति में एकाग्र होना, उसे योग कहते हैं। आंखें नेचुरल खुली रखें। आज मैं योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखें, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। कुछ क्षणों के लिए आसपास की व्यक्तियों से, साधनों से, परिस्थितियों से, साक्षी हो जाएं। स्वयं के मस्तक बीच भ्रुकुटी में, स्वयं के चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा हूं। इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं, कंट्रोलर हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार सूर्य चांद सितारों से भी आगे परम धाम है। जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं। अब मैं जानती हूं परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मैं मन की आंख से ज्ञान नेत्र से मेरे अति प्रिय परम पिता को देख रही हूँ। अब मुझे सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुझे स्पष्ट है मैं कौन हूँ और मुझ आत्मा के पिता परमात्मा कौन है। मेरे प्यारे शिव पिता, आप शांति के सागर, अखूट शांति के भंडार, शांति दाता है। आप की संतान में आत्मा भी अपने असली स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। मैं स्वयं शांत रहूंगी, शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। मेरे प्यार के सागर, सर्व के सुखदाता, मीठे शिव बाबा, आपकी अमर संतान मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। मैं सबके साथ प्यार से चलूंगी, सब को सुख दूंगी। मुझे ये निश्चय और गर्व है मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शांत हूँ, सत्य पवित्र हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु अविनाशी चैतन्य शक्ति। ॐ शान्ति।